व्यवस्था विवरण अध्याय 25।
व्यवस्था विवरण अध्याय 25 की चर्चा को कुछ ऐसे नियमों के साथ समाप्त किया जो एक दूसरे के बीच मौलिक निष्पक्षता के परमेश्वर के सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमते हैं। वे नियम एक पत्नी के संदर्भ में दिए गए थे जिसने अपने पति के किसी अन्य व्यक्ति के साथ झगड़े में हस्तक्षेप किया और उसे जीतने में मदद करने के लिए उसने अपने पति के प्रतिद्वंद्वी के जननांगों को पकड़ लिया। यह लोगों को धोखा देने के स्पष्ट इरादे से इस्तेमाल किए जाने वाले दो अलग अलग वजन और माप के सेट नहीं होने के बारे में एक व्यवस्था में बदल गया। इन दोनों के ठीक बाद वह व्यवस्था है जिस पर हम आज चर्चा शुरू करेंगे, व्यवस्था विवरण 25-17 का व्यवस्था। यह व्यवस्था इसराइल को हमेशा याद रखने के लिए कहता है कि उनके कट्टर दुश्मन अमालिकियाओं हैं और जब सही समय आएगा तो इसराइल को उस दुष्ट राष्ट्र का सफाया कर देना चाहिए। आइए व्यवस्था विवरण 25 के उस छोटे से भाग को पुनः पढ़ें जिसमें इस चेतावनी के बारे में बताया गया है।
व्यवस्था विवरण 25-17 को पुनः पढ़ें अंत तक। वे अमालिकी कौन हैं जिन्हें यहोवा चाहता है कि इसराइल कभी न भूले और अंततः नष्ट कर दे? खैर, अगर प्रभु ने उन्हें इसराइल के कट्टर दुश्मन के रूप में सामने और केंद्र में रखने का फैसला नहीं किया होता तो वे वास्तव में एक बहुत ही साधारण लोग थे जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है। उत्पत्ति हमें बताती है कि अमालेक का व्यक्ति एसाव का पोता था। एसाव कुलपिता याकूब का जुड़वां भाई था जो एसाव के बेटे एलीपज का पिता था। इसीलिए अमालेक इसराइल से संबंधित था और एक सेमाइट था, लेकिन क्योंकि वह इब्रानी नहीं था इसका मतलब यह है कि अमालेक और अमेलिकाइट्स गैर यहूदी थे। फिर भी अमालेक ने जो लोग पैदा किए और एक राष्ट्र के रूप में विकसित हुए वे परमेश्वर की नजर में विशेष रूप से दुष्ट थे। वास्तव में मैं तर्क देता हूं कि उन्हें बाइबल में एक प्रकार एक पैटर्न शायद इसराइल के दुश्मन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन पदों में ध्यान दें कि परमेश्वर कहता है कि इसराइल को कभी नहीं भूलना चाहिए कि अमालेक ने उनके साथ क्या किया, कि अमालेक ने इसराइल पर तब हमला किया जब वे फिरौन की पकड़ से बचने और वादा किए गए देश की यात्रा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अमालेक के पास इसराइल से घृणा करने और उस पर हमला करने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं था, क्योंकि इसराइल ने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो बाइबल या किसी अन्य ज्ञात ऐतिहासिक कथा में दर्ज है। अमालेक उनसे नफरत करता था, जहां तक हम जानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अस्तित्व में थे। उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे करते थे। उन्होंने कायरतापूर्ण और सम्मानहीन व्यवहार किया क्योंकि उनका तरीका इसराइलियों की मीलों लंबी पंक्ति के पीछे से आक्रमण करना था, जहां कमजोर और बुजुर्गों को उनके साथ बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था।
दूसरे शब्दों में उन्होंने जो किया वह मूलतः अनुचित था, और जैसा कि आपको याद होगा मूलतः निष्पक्षता ही इस अध्याय के पिछले कुछ पदों का मुद्दा था।
बहुत समय बीतने के बाद ही परमेश्वर ने इसराइल को अमालेक राष्ट्र का विनाश करने का निर्देश दिया। मूसा के समय से लगभग 250 साल बाद राजा शाऊल को परमेश्वर ने अमालेक पर हमला करने और उन्हें दुनिया से मिटाने की प्रक्रिया शुरू करने का सीधा आदेश दिया था।
आइए राजा शाऊल और अमालेक के साथ उसके युद्ध की कहानी को पढ़ने के लिए समय निकालें, क्योंकि यह कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आपस में जोड़ता है जिन पर हमने अतीत में चर्चा की है। पहला, शमूएल पढ़ें 15 तक। संक्षेप में, परमेश्वर ने राजा शाऊल को अमालेक से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और हर चीज को मार डालने का आदेश दिया। शाऊल ने तुरंत कई हजार सैनिकों को बुलाया, उन्होंने घात लगाकर हमला किया और अपने प्रयासों में काफी हद तक सफल भी हुए।
हालांकि इसराइल के हमले से पहले वे केनियों के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी देते हैं, अन्यथा वे संपार्श्विक क्षति बन जाएंगे। जैसा कि इस युग की लड़ाइयों में प्रथागत था, अमालेक के राजा अगाग को शाऊल ने पकड़ लिया और उसकी जान बख्श दी। अमालेकियों के स्वस्थ जानवरों को इसराइलियों ने युद्ध की लूट के रूप में ले लिया। इस कृत्य ने परमेश्वर को इस हद तक क्रोधित कर दिया कि उसने खुले तौर पर कहा कि उसे शाऊल को इसराइल का राजा बनाने का कितना पछतावा है। पैगंबर और पूर्व न्यायाधीश शमूएल, इब्रानी में शमूएल ने हस्तक्षेप किया और शाऊल से कहा कि उसने परमेश्वर की अवज्ञा की है और अब उसे इसके लिए अपने सिंहासन की वैधता खोने की कीमत चुकानी होगी। शाऊल ने तर्क दिया कि शमूएल गलत था, उसने वही किया जो यहोवा ने उससे कहा था, अमालेकियों का विनाश करना। लेकिन अंत में उसने स्वीकार किया कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, हालांकि उसके मन में यह कोई महत्वपूर्ण बात न होकर एक तकनीकी बात थी। शमूएल ने राजा अगाग को अपने पास लाने का आदेश दिया, जिसके बाद उसने अगाग को मार डाला और उसे टुकड़ों में काट दिया। यह आखिरी बार था जब शमूएल ने शाऊल को देखा, वह व्यक्ति जिसे उसने पहले व्यक्तिगत रूप से इसराइल का पहला राजा होने के लिए अभिषिक्त किया। इस अध्याय की 23वीं पद में प्रभु राजा शाऊल के पाप की तुलना जादू टोना और मूर्ति पूजा के पापों से करते हैं और कहते हैं कि चूंकि शाऊल ने यह दुष्टता की है, इसलिए परमेश्वर अब शाऊल को अस्वीकार करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ पापों और अपराधों में से जो स्वतः ही मृत्यु दंड की मांग करते हैं, जिसका अर्थ है कि मूसा के व्यवस्था में प्रायश्चित का कोई साधन प्रदान नहीं किया गया है, उनमें से दो जादू टोना और मूर्ति पूजा है। परमेश्वर राजा शाऊल के साथ अपना काम कर चुका है और अब वह खुद को उससे अलग कर लेगा। यह अंतिम मृत्यु दंड है। बात यह है, शाऊल ने ऐसा क्या किया जो इतना जघन्य था कि उसे इतनी कठोर सजा मिलनी चाहिए? मूल रूप से यहोवा की कठोरता का कारण इस प्रश्न के उत्तर में समाहित है। वह कौन था जिसने अमालेक के विरुद्ध युद्ध का आदेश दिया था? उत्तर, यहोवा। इसलिए यह औपचारिक रूप से ईश्वर द्वारा निर्धारित पवित्र युद्ध है। केवल ईश्वर ही पवित्र युद्ध का आदेश दे सकता है। जो लोग ईश्वर के नाम पर युद्ध में शामिल होते हैं, जैसे धर्म युद्ध में, वे अपने दावों के बावजूद पवित्र युद्ध में शामिल नहीं होते। जब हम ऐसा युद्ध लड़ते हैं जिसका ईश्वर ने सीधे और स्पष्ट रूप से आदेश नहीं दिया है, तो यह करना आवश्यक और सही काम हो सकता है और ईश्वर हमारे पक्ष में भी हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन यह पवित्र युद्ध की परिभाषा नहीं है। धर्मशास्त्र के अंत के बाद से कोई भी पवित्र युद्ध नहीं हुआ है, कम से कम जहां तक हम जानते हैं। जब तक मसीहा वापस नहीं आ जाता और अगले पवित्र युद्ध का नेतृत्व नहीं करता, जिसे हम आमतौर पर आर्मागेडन की लड़ाई कहते हैं, तब तक कोई पवित्र युद्ध नहीं होगा। पवित्र भूमि पर लौटने के बाद से प्रभु ने कई युद्धों में इसराइल की सहायता की है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसराइल पवित्र युद्ध लड़ रहा था। इस्लाम के खिलाफ खुद को बचाने के लिए हमारी वर्तमान लड़ाई ठीक वैसे ही जैसे इसराइल की अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई पूरी तरह से उचित है, लेकिन यह सच्चा पवित्र युद्ध नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे देख सकते हैं और इसे स्वीकार कर सकते हैं। पवित्र युद्ध में हेरेम का नियम लागू होता है, जिसके अनुसार युद्ध की लूट केवल परमेश्वर की होती है, युद्ध में भाग लेने वाले लोगों की नहीं। चूंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसे न तो पकड़े गए मवेशियों या मानव दासों की जरूरत है, न ही सोने और चांदी की और न ही दुश्मन के शहरों की। इसलिए पवित्र युद्ध के नियमों के अनुसार, जिसका हमने कुछ समय पहले गहराई से अध्ययन किया था, पवित्र युद्ध की सारी लूट परमेश्वर को सौंप दी जानी चाहिए, जब तक कि वह मामले के आधार पर कुछ अपवादों को निर्दिष्ट न करे। ये लूट अपने स्वभाव से ही परमेश्वर की पवित्र संपत्ति है। सामान्य परिस्थितियों में, जैसे कि नियमित लेवी बलिदान की पेशकश, परमेश्वर की पवित्र संपत्ति के रूप में नामित वस्तुओं को निपटान के लिए पुरोहितों को सौंप दिया जाता है और अधिकांश सामान, अनाज, फल, शराब, मांस को पुरोहितों और लेवी मजदूरों के बीच उनके ईश्वर अधिकृत जीवन यापन के साधन के रूप में विभाजित किया जाता है। पौधों और जानवरों का एक बहुत छोटा हिस्सा पीतल की वेदी पर जला दिया जाता है। लेकिन पवित्र युद्ध में आमतौर पर वस्तुओं को उनके वितरण और उपयोग के लिए पुरोहितों को नहीं सौंपा जाता है। इसके बजाय पवित्र युद्ध की लूट को नष्ट कर दिया जाना चाहिए और या जला दिया जाना चाहिए। उन्हें यहोवा को देने के प्रतीकात्मक तरीके के रूप में उनके तत्वों में वापस कर दिया जाता है। यह भी जितना लेना मुश्किल है पकड़े गए लोगों के लिए लागू होता है। परमेश्वर तय करते हैं कि उनके साथ क्या किया जाना है। कुछ मामलों में पुरुषों को मार दिया जाना चाहिए और महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें दास के रूप में इज़राइल में शामिल कर लिया जाता है और हमेशा कुछ पीढ़ियों के बाद अंततः नागरिकों के रूप में आत्मसात कर लिया जाता है। अन्य समयों में जैसे अमालेक के साथ सभी लोगों को मार दिया जाना चाहिए, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, शिशु।
राजा शाऊल एक कमजोर और स्वार्थी राजा था, इसलिए उसने पवित्र युद्ध के व्यवस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने तय किया कि वह कुछ काम परमेश्वर के तरीके से और कुछ अपने तरीके से करेगा। इसलिए जब उसने अमालेक पर हमला करने के लिए परमेश्वर के आदेश का पालन किया, और ऐसा लगता है कि इस समय तक अमालेक इज़राइल और शाऊल के लिए कोई विशेष रूप से खतरनाक समस्या नहीं थी और शाऊल ने सभी लोगों को मार डाला, उसने अमालेक के राजा को नहीं मारा। इसके अलावा उसने युद्ध की लूट में से कुछ अपने लिए भी ले लिया और कुछ इसराइलियों को अपने लिए लेने दिया। ये परमेश्वर की पवित्रता का सीधा अपमान था, क्योंकि राजा शाऊल और उन इसराइलियों ने खुद को परमेश्वर की पवित्र संपत्ति में मदद की थी।
यह अपमान इतना गंभीर था कि परमेश्वर के भविष्यवक्ता शमूएल ने राजा शाऊल से खुद को पूरी तरह और हमेशा के लिए अलग कर लिया। यह पूरी तरह से उचित था, क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवक्ता के लिए परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति को देने का क्या फायदा था जो अब परमेश्वर से अलग, करेट, कट ऑफ हो चुका है।
इससे पहले कि हम व्यवस्था विवरण पर वापस जाएं, मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा। बाइबल में हम अक्सर ऐसे कथन देखते हैं जिनमें सब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, या हम ऐसे कथन देखते हैं जो अंतिमता या पूर्ण समावेश या उस मामले में पूर्ण बहिष्कार को इंगित करते हैं। लगभग हमेशा वे सामान्य कथन होते हैं। यह ऐसा होगा जैसे हम किसी वित्तीय योजना में ठगे गए हों और विलाप कर रहे हों कि हमने अपना सारा पैसा खो दिया है, जबकि हम बहुत ज्यादा नुकसान में हो सकते हैं और वास्तव में हमारी संपत्ति बहुत कम हो गई है। हमने अपना 100% पैसा नहीं खोया है और फिर कभी हमारे पास पैसा नहीं होगा। इसलिए अमालेकियों की हमारी कहानी में जहां ये कहा गया है कि शाऊल ने लोगों अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, इसका किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि हर आखिरी अमालेकियों को मार दिया गया था।
वास्तव में इसके बाद राजा दाऊद को फिर से अमालेकियों से निपटना पड़ा और उसने उन्हें तब तक नष्ट किया जब तक कि लगभग कुछ भी नहीं बचा। सदियों बाद राजा हिजकियाह ने शिमोन के गोत्र के 500 लोगों को माउंट सेडर एदोम के क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, ताकि अमालेक के बचे हुए लोगों को अंततः और स्थायी रूप से मिटा दिया जा सके। अमालेक के बारे में इतनी लंबी बात करने का कारण यह है कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अमालेक निश्चित रूप से वास्तविक था और उनके बारे में कहानियां भी सत्य हैं, लेकिन वे एक प्रकार का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और अमालेक जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है वह केवल बाइबल के समय से संबंधित नहीं है। जब हम इतिहास की किताबों से धूल झाड़कर करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि अमालेक भी मसीह विरोधी और शैतान की भावना का प्रतीक है। शैतान महान दुष्ट इसराइल और मानव जाति और परमेश्वर का परम शत्रु। यदि आप यह समझना चाहते हैं कि शैतान के प्रति परमेश्वर का रवैया क्या है और शैतान और उसके अनुयायियों के प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए, तो अमालेक की कहानियों का अध्ययन करें। परमेश्वर शैतान उसके अनुयायियों और शैतान के पास मौजूद हर चीज को पूरी तरह से मिटाने की प्रक्रिया में है और वह यह काम अमालेक पर किए गए नरसंहार की तरह ही करेगा। आइए कुछ सप्ताह पहले चर्चा की गई बात को याद करें। आधुनिक चर्च में यह धारणा एक गलत धारणा है कि यीशु ने ईश्वर के चेहरे और चरित्र को संशोधित किया है। इस पुराने ईश्वर से जो अपने शत्रुओं का न्याय करेगा और उन्हें नष्ट करेगा, नए ईश्वर की ओर जो पाप को अनदेखा करता है और एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी दया इतनी महान है और वह हर किसी और हर चीज से इतना प्यार करता है। अवधारणा यह है कि यहोवा ने क्रोध और न्याय के अपने गुणों को त्याग दिया है और अब 100% प्रेम को भूल गया है। वह परम शांतिवादी देवता है जो केवल हमारे लाभ के लिए मौजूद है। उसका नया आदर्श वाक्य है, कोई नुकसान नहीं, कोई बेईमानी नहीं। और यीशुआ की एक प्राथमिक बात जिसका इस्तेमाल इस आधुनिक स्थिति का बचाव करने के लिए किया जाता है वह यह है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना चाहिए, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। मैं इस निर्देश को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। लेकिन समझिए, हमारे अपने शत्रुओं से प्रेम करने और ईश्वर के शत्रुओं से प्रेम करने में रात दिन का अंतर है। जिस तरह न्यायोचित और तर्कसंगत मानवीय युद्ध बनाम ईश्वर द्वारा नियुक्त पवित्र युद्ध मौजूद है, उसी तरह हमारे व्यक्तिगत शत्रुओं, जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है या हमारे पड़ोसियों के रूप में हमें अपमानित किया है, बनाम उन लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है जिन्हें ईश्वर ने अपना शाश्वत शत्रु, ईश्वर के राज्य के शत्रु घोषित किया है। हमें वास्तव में उस व्यक्ति से प्यार करना चाहिए और उससे नफरत नहीं करनी चाहिए जिसने शायद हमें धोखा दिया हो या हमारी निंदा की हो या शायद हमें मारने की कोशिश भी की हो, चाहे वह ईसाई हो या नहीं। लेकिन हमें उन लोगों से प्यार नहीं करना चाहिए और उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए जिन्हें परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से विनाश के लिए चिह्नित किया है, क्योंकि वे उसके शाश्वत शत्रु हैं जो उसके राज्य का विरोध करते हैं। अमालेक परमेश्वर के शत्रुओं में से एक था, शैतान और उसके अनुयायी दूसरे हैं। ध्यान दें कि व्यवस्था विवरण 25 का 17 का निर्देश हमेशा याद रखना है कि अमालेक ने इसराइल के साथ क्या किया और कैसे परमेश्वर उनसे घृणा करता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर उन्हें अस्वीकार करता है और कैसे उसकी योजना इसराइल को अमालेक पर अंतिम विनाश के अपने दिव्य साधन के रूप में उपयोग करना है। इसराइल के परमेश्वर के आधुनिक विश्वासियों को भी अमालेक को याद रखना चाहिए, शैतान के राष्ट्र और लोगों को, और उनके खिलाफ पवित्र युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। वह पवित्र युद्ध दूर नहीं है और हमें इसके लिए अपनी तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। यह तब शुरू होगा जब परमेश्वर शैतान और उसके अनुयायियों के खिलाफ दिव्य योद्धा नेता के रूप में मसीहा यीशुआ को वापस भेजेगा। लेकिन जबकि बहुत पहले इसराइल के लिए तैयारी, भाले और धनुष और तलवारें थीं, हमारे लिए यह हमारे उद्धारकर्ता के रूप में यीशुआ पर और मनुष्यों के लिए परमेश्वर की इच्छा के रूप में परमेश्वर के वचन पर भरोसा है। इस बात पर भी ध्यान दें कि जबकि इसराइल को अमालेक से जितना संभव हो सके उतना अलग रहना था और अमालेक से कोई लेना देना नहीं था और उन्हें हर समय अमालेक से खुद का बचाव करना था कि अमालेक के खिलाफ पवित्र युद्ध की कोशिश कभी भी नहीं की जानी थी, जब भी इसराइल को अपनी ताकत का एहसास हो। अगर इसराइल में अचानक कोई धार्मिक उत्साह आ जाता तो नेता एक साथ मिल जाते और वे तय करते कि अब वे अमालेक पर हमला करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, तो यह पवित्र युद्ध नहीं था। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 26 पर चलते हैं। अध्याय 26 को पढ़ने से पहले मैं यह कहकर इसका परिचय देना चाहूंगा कि यह 4 अध्याय वाले खंड की शुरुआत करता है जो मूसा के व्यवस्था में निहित आशीर्वाद और श्रापों के इर्द गिर्द घूमता है। हमने अध्याय 25 को समाप्त कर दिया जहां को विषय अनिवार्य रूप से मौलिक निष्पक्षता था, और व्यवस्था विवरण के इस 4 अध्याय वाले खंड में जो अध्याय 26 से शुरू होता है, सच्चे धर्म के विषय को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा और उदाहरण दिए जाएंगे। खंड के अंत में परमेश्वर की अक्सर भूली जाने वाली चेतावनी की यह आज्ञा जो मैं आज तुम्हें देता हूं वह तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं है बोली जाती है, और हम सभी को इस दिव्य कथन को अपनी यादों में उकेर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर नई वाचा देने के लिए गलत कारण यह दिया जाता है कि व्यवस्था का पालन करना बहुत कठिन था।
यदि इसराइल मूसा की वाचा की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है तो भविष्य में उसके लिए आपदाओं की चेतावनी भी दी गई है, और हम कुछ वाचा नवीनीकरण समारोहों को देखेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग यह समझें कि मूसा की वाचा हमेशा के लिए कायम है, यह उनके वादा किए गए देश में प्रवेश के साथ समाप्त नहीं हुई। लेकिन इस खंड का एक और पहलू है जो वास्तव में आकर्षक है और यह अध्याय के शब्दों में कहा गया है, जिसे हम कुछ सप्ताह में पढ़ेंगे, अध्याय 29 पद 28। यह पहलू एक पहेली, एक रहस्य के रूप में है जो तोरह का पालन करने के लिए इज़राइल के कर्तव्य के बारे में है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा की हैं और प्रकट बातें हमारे और हमारे सभी बच्चों के लिए हमेशा के लिए हैं। हमें इस तोरह के सभी शब्दों का पालन करना है। मैं इस संबंध में प्रख्यात विद्वान सी जे लेबुशेन को उद्धृत करने से बेहतर कुछ नहीं कर सकता। व्यवस्था विवरण के पाठ का स्पष्ट अर्थ इसके तात्कालिक संदर्भ को संदर्भित करता है, जो याहवे के आदेशों की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप इज़राइल के लिए एक राष्ट्रीय आपदा की बात करता है। लेकिन साथ ही उन शब्दों में एक और संदेश भी है। छिपी हुई बातें व्यवस्था के लिखित पाठ के संबंध में गूढ़ ज्ञान, पवित्र संख्यात्मक संरचनाएं, ये सभी ईश्वर के पवित्र लाभ के लिए, उनकी महिमा के लिए है। लेकिन व्यवस्था का पाठ अपनी सीधी सरल भाषा में लोगों के लाभ के लिए है। हमारे पास जो है वह आम लोगों, अशिक्षित लोगों के लिए एक खोड़ित संदेश है, जो पाठ की छिपी हुई पेचीदगियों को नहीं जानते हैं, ताकि वे व्यवस्था का उसके स्पष्ट अर्थ में पालन करें। आप देखिए, प्रकट सत्य तोरह का वह हिस्सा जिसे सभी लोग विद्वान हुए बिना भी समझ सकते हैं कि विषय वस्तु वही है जो मूसा के उपदेश के हिस्से के रूप में लिखी गई है और जो व्यवस्था के उस केंद्रीय सार में निहित है। यह वे व्यवस्था और आदेश हैं जो हमें व्यवस्था विवरण अध्याय 12 से 26 में सरल भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन अध्याय 26 से 30 में हम जो पाते हैं वह उन गहरे रहस्यों के दायरे में प्रवेश करना शुरू कर देता है जिन्हें केवल वे ही समझ सकते हैं जो इज़राइल के परमेश्वर को जानते हैं, प्यार करते हैं और लग्न से उसकी तलाश करते हैं। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 26 पर हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 26 पर हैं। इस अध्याय के सबसे दिलचस्प प्रकाशनों में से एक यह है कि यहां और पूरे तोरह में अकेले यहां हमें कुछ सटीक रूप से निर्धारित घोषणाएं मिलती हैं, जिन्हें प्रत्येक आम उपासक को अपने पहले फलों को तंबू में लाने की रस्में करते समय पढ़ना होता है। संक्षेप में ये घोषणाएं सामान्य इसराइलियों के लिए ईश्वर द्वारा डिजाइन की गई प्रार्थना का रूप है। इस अर्थ में यह प्रार्थना प्रकृति में नए नियम की प्रभु की प्रार्थना के बहुत समान है, जबकि पुजारी अक्सर अपने अनुष्ठान के भाग के रूप में प्रार्थना का रूप रखते हैं। हमें बाइबल में प्रार्थना का रूप के रूप में बहुत कुछ नहीं मिलता है जो औसत व्यक्ति के बोलने के लिए डिजाइन किया गया हो। तंबू और बाद में मंदिर में प्रथम फल लाने के बारे में यह नियम जंगल में नहीं निभाया जा सकता था। यह एक व्यावहारिक मामला था। केवल इसराइलियों द्वारा कनान की भूमि पर विजय प्राप्त करने और बसने के बाद ही इसका पालन किया जा सकता था, जब गोत्रों के पास कटाई के लिए खेत और बारा होते थे। मेरे लिए यह दिलचस्प है कि इब्रानी किसान के लिए निर्देशों में से एक यह है कि उसे अपनी फसल का वह हिस्सा टोकरी में रखना है जिसे वह परमेश्वर को भेंट करने के लिए लाएगा। यह एक बहुत ही तुच्छ विवरण की तरह लगता है, जब तक कि हम यह नहीं समझ लेते कि इज़राइल के इतिहास में उस बिंदु तक जहां हम अब व्यवस्था विवरण में हैं, इज़राइल खेती के बारे में बहुत कम जानता था। वे ऐतिहासिक रूप से चरवाहे लोग थे, वे जानवर पालते थे। मिस्र में कुछ लोग संभवतः कृषि में लगे हुए थे, लेकिन बड़ा हिस्सा चरवाहे और निर्माण श्रमिक थे। इसलिए जबकि प्रथम फल समारोह कुछ मध्य पूर्वी संस्कृतियों के लिए जाने जाते थे, वे संभवतः इसराइलियों के लिए ज्ञात नहीं थे। इन भावी किसानों को विवरण दिया जाना था। अब तक हमारे अध्ययनों ने हमें दो तथाकथित प्रथम फल समारोहों से परिचित कराया है। एक जिसे इब्रानी में बिक्कुरिम कहा जाता है, वसंत के त्योहार फसह और अखमीरी रोटी के साथ, और फिर प्रथम फल का एक और ग्रीष्मकालीन त्योहार जिसे शावोत कहा जाता है।
ईसाई इसे पेंतिकोस्त कहते हैं। वास्तव में एक तीसरा प्रथम फल उत्सव है जो पतझर के मौसम के त्यौहार सुखकोत या झोपड़ियों के पर्व के साथ मनाया जाता है। यह अंतिम एक तकनीकी रूप से अंतिम एकत्रीकरण के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह कटाई के मौसम का अंत है क्योंकि सर्दी करीब आती है। प्रथम फलों से संबंधित इन तीन त्योहारों में से प्रत्येक तीर्थ यात्रा त्योहारों से जुड़ा हुआ था। कुल 7 बाइबल पर्वों में से उनमें से 3 में प्रत्येक उपासक, आमतौर पर पुरुषों का मतलब, को अपने प्रथम फलों की भेंट के साथ तंबू के स्थान पर यात्रा करनी होती थी। यही पद 3 में कथन का अर्थ है जो इन शब्दों के साथ समाप्त होता है, और उस स्थान पर जाओ जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा। इसराइल द्वारा पहली बार कनान पर विजय प्राप्त करने के बाद वह स्थान कुछ बार लिए सबसे स्थायी स्थान था, और समय के साथ इसराइल ने कई प्रतिस्पर्धी स्थल स्थापित किए, और अंततः दाऊद और फिर सुलेमान के समय तक यह यरूशलेम बन गया जहां अंततः मंदिर का निर्माण किया गया। हर साल इन 3 बार में से प्रत्येक यात्रा पर तंबू में पूजा करने वाले को अपनी उपज की टोकरी पुजारी को सौंपनी होती है जो समारोह का संचालन और संचालन करेगा। पुजारी को अपने पहले फलों की बलि सौंपने के बाद आम आदमी को निम्नलिखित घोषणा करनी होती है, मैं आज यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के सामने स्वीकार करता हूं कि मैं उस देश में प्रवेश कर चुका हूं जिसे देने की शपथ यहोवा ने हमारे पूर्वजों से ली थी। उस घोषणा का अर्थ सीधा है, लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह अब्राहमिक वाचा की पूर्ति है। जिस भूमि का वादा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बहुत पहले किया था वह दे दी गई है, यह पूरी हो गई है। यह कोई दूसरी भूमि नहीं थी, यह यही भूमि थी। यह किसी और समय में नहीं होती, यह अभी होती। खेत की पहली फसल देने से यह संबंध है कि उनके पास जो भूमि है उसके बिना देने के लिए कोई पहली फसल नहीं होती। चर्च, मेरी बात सुनो, यह सुनकर मेरा दिल दुखता है कि इतने सारे संप्रदाय के नेता वास्तव में सवाल करते हैं कि यहूदियों को अनिवार्य रूप से इसराइल में वापस क्यों आना चाहिए, और यह एक मुद्दा है क्योंकि वहां यहूदियों की उपस्थिति ने कथित तौर पर फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया है, जबकि यह बाइबल में एकमात्र स्थान नहीं है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर ने कनान को विशेष रूप से इसराइल को देने का इरादा किया था। यह घटना वास्तव में हुई थी और परमेश्वर ने इस प्रार्थनापूर्ण घोषणा में इसराइलियों से उस तथ्य को स्वीकार करने की भी अपेक्षा की थी। यह उल्लेखनीय है कि घोषणा यह है कि मैं कनान की भूमि में प्रवेश कर चुका हूं। यह घोषणा इसराइलियों की पहली पीढ़ी के लिए अधिक उपयुक्त लग सकती थी जो यहोशू के साथ लड़े थे, लेकिन प्रभु का इरादा है कि इब्रानी की हर पीढ़ी खुद को उस भूमि से पहचाने जैसे कि वह वहां पहला व्यक्ति था। मिशना फसह के पालन के बारे में कहता है कि हर पीढ़ी में व्यक्ति को खुद को इस तरह से देखना चाहिए जैसे कि वह व्यक्तिगत रूप से मिस्र से बाहर आया हो। यह उस सिद्धांत का स्रोत है। यह प्रथम फल समारोह का पहला भाग समाप्त करता है। इसके बाद जब पुजारी टोकरी लेकर उसे वेदी के सामने रख देता है तो इब्रानी किसान को प्रभु के सामने एक और घोषणा करनी होती है, और जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वह यह है कि यह अनिवार्य रूप से इसराइल के इतिहास की एक संक्षिप्त समीक्षा है। इस दूसरी प्रार्थनापूर्ण घोषणा में उपासक कई बातों को स्वीकार करता है। 1, इसराइल की शुरुआत कुछ खास नहीं थी, मेरे पिता आराम से खानाबदोश थे। इसके सटीक अर्थ पर थोड़ा बहस हुई है, लेकिन अंतर्निहित अवधारणा काफी सरल है। अब्राहम, इसहाक और याकूब सभी ने अपने पूर्वज तेराच, अब्राहम के पिता, की मातृभूमि के साथ अधिक पहचान बनाई, न कि उस स्थान से जहां वे मिस्र में स्थानांतरित होने से पहले भटकते थे, कनान। जिस क्षेत्र से अब्राहम आए थे उसका एक नाम नदी के किनारे अराम है, इसलिए यह पहचानना बिल्कुल सही है कि कुलपिता अरामी थे। कुछ बाइबल संस्करण इसका अनुवाद सीरिया से भगोरा के रूप में करेंगे, क्योंकि दमिश्क सीरिया अंततः अरामियों का गढ़ बन गया, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि कुलपिताओं के समय के बहुत बाद। यह सब कहने के बाद बात यह है कि प्रत्येक इसराइली अपने संबंध को उन कुलपिताओं से घोषित करता है जो मूल रूप से आराम से थे। दो, इसके बाद यह स्वीकार किया गया है कि संख्या में बहुत छोटा होने के कारण याकूब का वंश किसी भी तरह से इतना बड़ा नहीं था कि उसे लोग या राष्ट्र के रूप में देखा जा सके, मिस्र में चला गया जहां वे एक बड़ा राष्ट्र बन गए। तीन, अब मिस्र में उनके रहने की स्थिति बताई गई है, यह कठोर उत्पीड़न के तहत अस्तित्व में थे।
चार, कठिन परिश्रम और गुलामी की इस स्थिति से प्रभु ने इज़राइल को बचाया और यह काम उसने चमत्कारिक और अलौकिक तरीके से किया।
पांच, परमेश्वर ने इज़राइल को उस स्थान से जहां वे भूमिहीन और आशाहीन थे उस भूमि पर ले आया जिसे उसने अपने लोगों के लिए अलग रखा था, जैसा कि कुल पिताओं से वादा किया गया था, जहां उनके पास भूमि होगी और भूमि उनके लिए प्रचुर मात्रा में उपज देगी। छह, और चूंकि ये परमेश्वर ही है जो सभी चीजों का मालिक है, चूंकि उसने सभी चीजों का निर्माण किया है, इसलिए यह तर्क संगत है कि वादा किए गए देश की मिट्टी में उगने वाली चीजों को परमेश्वर की संपत्ति समझा जाना चाहिए। इसलिए जो उगता है उसका एक हिस्सा जो सबसे पहला और सबसे अच्छा होता है धन्यवाद के लिए यहोवा को चढ़ाया जाता है। इस सब में यह बात छिपी हुई है कि इज़राइल कनानियों के इस दावे को नकारता है कि बाल ही देश पर शासन करने वाला देवता है, यहोवा ही सर्वोच्च है, इज़राइल में हुए सभी चमत्कारों के पीछे वही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि बाइबल और ऐतिहासिक रूप से आज तक यहूदी चीजों को राष्ट्र और यहूदी लोगों के संदर्भ में देखते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से।
शास्त्रों में सामूहिक पहचान को व्यक्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए पुजारी इज़राइल की ओर से अनुष्ठान करते हैं और पर्व सामूहिक रूप से इज़राइल के लिए होते हैं। तोरह में केवल कुछ ही स्थान हैं जहां व्यक्ति को हाईलाइट किया गया है, और यह विशेष स्थान है जो मेरा ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि यह सब मोचन के बारे में है। प्रत्येक इज़राइली को इज़राइल के परमेश्वर के साथ अपनी पहचान को स्वीकार करना चाहिए और उस मोचन को जो यहोवा ने उसे एक व्यक्ति के रूप में दिया है। प्रथम फल समारोह स्वर और उद्देश्य में काफी व्यक्तिगत है। समारोह का समापन एक आनंदमय भोज के साथ होता है। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के पास खाया जाने वाला उत्सवी भोजन उपासक के लिए आवश्यक है, और चूंकि लेवी निवास स्थान के मामलों की देखभाल में व्यस्त थे इसलिए वे आम तौर पर खेती करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए लेवी को उत्सव मनाने आए सैकड़ों हजारों उपासकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्सवी भोजन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाना था। यहां तक कि गैर विदेशियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह इज़राइल को एक ऐसे देश में विदेशी होने की असहज परिस्थिति को याद रखने में मदद करता है जो उनका अपना नहीं है। इसलिए उन्हें परदेशियों पर दया और करुणा दिखानी चाहिए, क्योंकि यहोवा ऐसा करता है। हम आज यहां समाप्त करेंगे और अगले सप्ताह पुनः पद 12 से शुरू करेंगे।